Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor Vibhuti Mishra.
Dhanyavad Lalima. Namaskar Shrotaon, Market Mantra ke is khas karyakram mein aapka swagat hai. Aaj hum aarthik aur vyapar jagat se jude sabhi khabron pe charcha bhi karenge, aapko jankari denge. Hamare saath वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक जयंता दास जी मौजूद हैं. जयंता दास जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है.
शुक्रिया.
और अब अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं मेरी सहयोगी लालिमा अनेजा डेंग.
धन्यवाद विभूति जी. यस, वी बिगिन विद द हेडलाइंस. डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेस एंड इन ग्रीन. सेंसेक्स क्लोजेस एट 74,221. निफ्टी सेटल्स एट 22,598. India improves 15 ranks, occupies 39th spot in World Travel and Tourism Development Index 2024. And Reserve Bank of India transfers 2,10,874 crore rupees to the central government as surplus.
प्रमुख घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद. सेंसेक्स 74,231 और निफ्टी 22,598 बंद. विश्व यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत 39वें स्थान पर 15 अंकों की सुधार. और भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को 2,10,874 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए. और सबसे पहले शेयर बाजार की खबर. वैश्विक शेयर बाजारों से नकारात्मक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए. बीएसई सेंसेक्स 268 अंक या 0.36% बढ़कर 74,231 पर बंद हुए. एनएसई निफ्टी 69 अंक या 0.32% बढ़कर 22,598 पर बंद हुआ. बीएसई के व्यापक बाजार में मिड कैप सूचकांक 0.05% नीचे आया जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 0.18% बढ़ा. और रुपया का हाल जान लेते हैं. विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 83.28 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में अंतिम समाचार मिलने तक नीचे गिरकर 104.73 पर कारोबार कर रहा था.
And other stocks in detail, the benchmark indices Sensex and Nifty ended in green today amid negative cues from the global share markets. The BSE Sensex advanced 268 points or 0.36% to close at 74,221. NSE Nifty gained 69 points or 0.32% and settled at 22,598. In the broader market at the BSE, the mid-cap index inched down 0.05%, while the small-cap index gained 0.18%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 21 companies appreciated and 9 companies declined. Hindustan Unilever rose 2.5%, Reliance added 1.72%, and Infosys increased by 1.43%. On the other hand, SBI dropped 1.4%, JSW Steel declined 0.93%, and Axis Bank lost 0.87%. In sectoral indices at the BSE, 13 sectors registered gains, 6 witnessed losses, and auto sector had a flat day. Realties rose 1.4%, FMCG gained 1.2%, and information technology and tech sectors added above 0.6%. On the other hand, Bankex fell 0.52%, Metal lost 0.4%, and financial services sector shed 0.33%. The overall market breadth was marginally negative, as shares of 1,932 companies advanced, 1,902 companies declined and 114 companies remained unchanged. So, Jayanta, what do you think is the cause of the fact that census advanced to 68 points today and closed at about 74,000 and NSE Nifty gaining 69 points, closing at about 22,000? It's been hovering around 73, 74. We touched 75. What are the factors that have led to this gain today?
Well, obviously, the recent U.S. market interest rates observation, where now I guess the markets are led to believe to the fact that there's not going to be much change in the interest rates, at least in September.
Mm-hmm.
And in addition to that, this morning also news came in that in U.K., the inflations are also at a stingingly worrying, if not level, at least they are worrisome for the central banker to take any rate cuts. So, globally, I don't think there's much of a, you know, incentive for the stock markets to move on. I think there is a lot of domestic factors, though, which, you know, might be incentivizing the market to stay at where there is. We are not having any runaway rise from the present levels. As you rightly said, it's hovering between 73, 74, 74 and a half, sometimes touching 75 and then coming back.
Mm-hmm.
What's important to understand is if the Sensex stays steady at these levels, once the new government comes in with a new set of policy framework, with a new focus and things like that, maybe you know, the Sensex would have an excellent solid foundation to further grow from there. So I think I'm looking forward to the trading weeks of, say, second week of June onwards, once the new government settles down in terms of the election results coming in. So and at the same time, we were expecting an extremely volatile May, let me tell you, but that didn't happen. So I think I'm happy for the fact that investors have been spared that trouble of seeing an extremely volatile market. But I would call the markets have been having a lukewarm response, both on the positive side and slightly on the negative side. But on the whole, I'm quite happy that the levels have been maintained at 73, 74 at this point of time. It's election time, and India is voting almost every week, some way or the other.
Yeah.
And keeping a pact from here, and also a more or less decent set of corporate results, including dividends, which have come up. So I think it's a good package in terms of what we are and how we are at this point of time. What's important to understand is there has also been a major geopolitical event, which we all know, happening with the attack of Iran and things like that.
Mm-hmm.
And Iran attacking Israel and all.
Mm-hmm.
So the markets didn't get shaken much, if you look at it very closely. Otherwise, these sorts of geopolitical events would have taken a really long toil on the markets in that sense. So it didn't shake, the markets didn't shake, man. And also to top it all, oil has been, you know, I mean, I'm sure you have an oil story towards the end of this news bulletin.
Yes, yes.
So maybe I speak more then.
And markets are always said to be sensitive to speculation, rumors. Stability of the government is another factor which they are banking upon, and that is probably keeping us kind of grounded.
Yeah, but stability of government is obviously one thing, but I think a consistent fiscal focus, number one, where it allows any government to come in, whether the incumbent government comes in or whoever comes in, to make a steady focus in terms of a vision statement which has been, you know, year by year has been approached in a very strategic manner.
Right.
That's the first part.
Mm-hmm.
The second part is we all know that the infrastructure investment and the infrastructure commitment of the present government has been really high, and they have to some extent maintained those milestones and maintained those promises
and targets.
Yeah. So that's the important you take from there, including the spending which has been done. And we also know that this particular phase, this last 5 years, India has faced a lot in terms of, not only India, the world has faced a lot in terms of the COVID, you know, meltdown happening, and in terms of how markets had to be resilient, how industries had to be resilient during those 1.5-2 years, the deaths, the health care and all those things. So I look forward to in this, that whoever comes in the next 5 years, there's not only a lot of new things to plan, but there's also some things to be rebuilt from whatever the learnings and whatever the foundations have been. And I think the markets are an important cue to understand whether the rebuilding is happening in the right directive or not. So from that viewpoint, I'm really optimistic that once the new government comes in June, and once we get to know, the markets would obviously build up on a more or less good foundation which we have seen in the month of May.
Mm-hmm.
Yeah. जयंता जी, आपने लालिमा जी के पहले ही प्रश्न में पूरा सारांश बता दिया और जो बाजार आगे क्या होंगे और अभी क्या रहेंगे उसकी कहानी पूरी तरह आपने कह दी है। फिर भी मैं उसमें दो प्रश्न को लेता हूं और दोनों प्रश्नों को मैं साथ में जोड़ता हूं। हम देख रहे हैं कि जो विश्व में जो वैश्विक शेयर बाजार में उसमें नकारात्मक संकेत हैं और एशिया के जो मतलब कि पांच में से चार बाजार में गिरावट है आज और यूरोप में गिरावट है, तो उसके बाद भी हम भारत में बढ़त देखते हैं। अभी आपने चर्चा की, आपने कहा कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव का ये रहेगा, लेकिन फिर भी अगर हम एक निरंतरता की बात करें और इन संकेतों की बात करें जो अभी आज हुए, तो आपको क्या दिखता है मार्केट?
देखिए, जैसे मैंने कहा, मई का महीने में मार्केट में काफी वोलेटिलिटी का उम्मीद था, उस हद तक वोलेटिलिटी मार्केट में आया नहीं है। हालांकि अभी भी करीबन पांच छह ट्रेडिंग डेज बाकी है, शायद कल मार्केट बंद है, मेरे को नहीं पता ठीक से, बुध पूर्णिमा है। और उस उम्मीद से अगर हम ध्यान करें कि ओवरऑल जैसे आपने कहा कि विश्वभर बाजार में थोड़ा बहुत नरमी इस वक्त चल रहा है, जो भी घटनाएं घटे हैं जैसे भी घटे हैं, लेकिन उसका सीधे असर हम लोग अपना देश में हमने देख नहीं पाए। अब सवाल यह है कि सेंसेक्स का जो लेवल्स जो मेंटेन हुए हैं इस बाजार में भी, ये मैं मानता हूं एक बहुत अच्छा फाउंडेशन, बहुत अच्छा नींव आने वाला दो तीन महीने का दौर मार्केट के लिए और तेजी से होने का शायद उम्मीद भी रखते हैं। और इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि जिस भी क्षेत्र में सेक्टरली इस मौजूदा जो आउटगोइंग सरकार है, जो उनका अलग से फोकस था, जो इनकमिंग सरकार जब आएंगे उस कंसिस्टेंसी अगर वो मेंटेन होता है, वो जो साथ में एक जो डायरेक्टिव था, साथ में जो अलग से डिसीजन मेकिंग था इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोजेक्ट्स, कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोग्राम्स, कंसिस्टेंसी ऑफ टारगेट्स, अगर वो सारे लगातार बरकरार रहेंगे तो मार्केट्स में मैं कोई अलग से कोई चैलेंज नहीं देख रहा हूं। रहे दूसरी बात कि भाई विदेशी बाजारों में, खासकर यूएस में, सबको पता है कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी इस साल के एंड तक, उसका भी एक दौर अलग से आएगा और यूएस ब्याज दर के ऊपर मार्केट के हमेशा एक हावी होता है, कहीं ना कहीं ब्याज दर के ऊपर जो गति है और ब्याज दर का गिरावट हुए नहीं है, सबको पता है रेट कट्स एक एक्सपेक्टेड था और वो हुए नहीं है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि 6 रेट कट्स शायद इस साल होंगे, लेकिन अभी जो स्थिति है मार्केट में ये उम्मीद किया जा रहा है कि अगर 2 भी हो जाए वो काफी है, लेकिन कहीं ना कहीं घोषणा हो। लेकिन कल बाजार में ये भी अलग से आलोचना में, एक इंटरव्यू में फेड का मुख्य सचिव ने अलग से भी कहा कि इस बार मार्केट का जो हाल देखते हुए और साथ में जो इन्फ्लेशन का हाल जो देखते हुए हम कहेंगे हमें कोई उतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, विच आई कम्प्लीट एग्री, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इन्फ्लेशन एक ऐसा चीज है, इट्स अ ह्यूज व्हाइट एलिफेंट और उसको सही रूप से सम्मान करना बहुत जरूरी है। कोई भी रेट दर में रातों रात टिंकरिंग करके मार्केट खुश हो जाए या मार्केट में अलग से उछाल आ जाए वो बहुत ही गलत होगा, और जिस वजह से मार्केट में मैं मानता हूं जो एक मोमेंटम फ्री सेंसेक्स का मूवमेंट या दुनिया भर के स्टॉक मार्केट का जो फ्री अपवर्ड मूवमेंट, वो अभी तक इस साल हम लोग को देखने को नहीं मिला।
जयंत, हेडलाइन इन्फ्लेशन इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और सीपीआई मॉडरेटेड टू 4.8% इन अप्रैल 2024 फ्रॉम 4.9% इन मार्च, लार्जली ड्यू टू बेस इफेक्ट। It is being said that India is now on the cusp of a long-awaited economic takeoff. Also, non-food spending is being pushed up by the green shoots of rural spending recovery. What are your views on
that? Well, that's good news, and I believe if the monsoons are going to take shape well, as I said, I'll just go back and when I said that the month of June, July, August, I expect a good deal of movement in the Sensex with three important factors: the new government coming in and the whole nation knowing it's what's the new five-year plan in terms of policies will be. The second factor would obviously be the fact that inflation is now being controlled and RBI has not moved up inch, but they believe that, you know, if the momentum of controlling inflation continues, there could be a hope of rate cut. And I believe it can happen in the, say, next second or third quarter of this fiscal. I'm just making a rough guess. And the third important point is the monsoons.
Right.
So if the monsoons pick up well, I think it will be a really, you know, a good triple whammy in terms of delivering some sort of support to the stock market at these levels. And of course, to the important stocks which the nation would feel that would have an impact once the government comes into power, the new government.
Yeah. तो गवर्नमेंट के पावर में आने की बात है। ऐसे निवेशक जो कि ये सोच रहे हैं कि भाई 12-13 दिनों की बात है, नई सरकार आ जाएगी, वो थोड़ा इंतजार करना चाहते हैं या फिर अगर वो कहीं न कहीं से किसी कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं तो आप उनको क्या कहेंगे?
देखिए विभूति, मैं हमेशा हम लोग इस श्रोताओं में लगातार हम लोग कई सालों से 20 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं
जी,
और मेरा हमेशा दो टिप्पणी रहता है, आप अपना निवेश जो भी है, अपना इन्वेस्टमेंट जो भी आप कर रहे हैं, वो आने वाला सरकार जाने वाला सरकार का ऊपर निर्भर करके ना करें, दैट शुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स में भी, लेकिन उसको ऊपर निर्भर करके आप करेंगे तो आपका पैसा कहीं ना कहीं डूबेगा, नॉट बिकॉज द गवर्नमेंट इज नॉट परफॉर्मिंग, ऐसा कुछ डूबेगा इसलिए बिकॉज आपका रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लान वो है नहीं कि ये सरकार आएगा तो मैं इस पर पैसा लगाऊंगा, नहीं आएगा तो नहीं लगाऊंगा, ऐसा नहीं होता मार्केट्स। दूसरी बात यह है कि आजकल का जो बाजार है, जिस तरह का स्टॉक ऑप्शन तरह तरह का है आपके पास, नॉट ओनली जस्ट बाइंग इक्विटी, आप फॉरवर्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में जा सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स कर सकते हैं, लगातार तरह तरह का करेंसी डेरिवेटिव्स है, चढ़ते हुए मार्केट में भी पैसा बना सकते हैं, गिरते हुए मार्केट में भी पैसा बना सकते हैं, जो शायद 20 साल पहले नहीं था, लोग सोचते थे भाई मार्केट में चले तो पैसा बनता है, गिरते हुए मार्केट में पैसा नहीं बन सकता है। तीसरी बात यह है कि हमेशा मैं कहा हूं कि भाई आपका जो भी निवेश है वो आपका एक इन्वेस्टमेंट का दौरान एक ड्यूरेशन होना चाहिए कि मैं ये पैसा लगा रहा हूं, इसको मेरे को 15 महीने के लिए लगा रहा हूं या 30 महीने के लिए लगा रहा हूं या 60 महीने के लिए लगा रहा हूं, वो अवधि आपका पास हो और साथ में आप अपना अलाइन करें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। हालांकि आई वुड ऑलवेज से कि इसको मिक्स करके लगाइए, हमेशा आपको ये नहीं कि आपको आपका पास 100 रुपये तो 100 रुपये आपको 15 महीने पास जरूरत है, ऐसा तो है नहीं, अगर आप मिक्स कर सकते उसको मिक्स करके लगाइए। और आज का दिन में मौजूदा गोल्ड सिल्वर मेटल इज एन इम्पोर्टेंट अट्रैक्टिव ऑप्शन, हम देखे पिछले 1.5 साल के दौरान, खास करके पिछले 4-5 महीने के दौरान गोल्ड में लोगों का जिस तरह का मुनाफा हुआ है तो वो भी एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यू होता है। तो म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बैंक एफडीज 8.5% अभी भी बैंक में एफडी मिल रहा है, 9% अभी भी ब्याज दर बैंक से मिल रहा है आपको लगातार को बैंक में, तो वो सारे चीज आप मिक्स करके आप अपना प्रोफाइल डिसाइड करें। और सबसे जरूरी जैसे मैंने कहा हमेशा, आपका निवेश का जो अवधि है वो आप समझ के चलिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर नया सरकार आए मार्केट में, अगर उछाल आता है कोई भी सरकार का नियर जो भी नीतिगत रूप से मार्केट में अलग से पॉलिसी वाइज डिसीजन कर सकता मार्केट में 3 महीने में उछाल है, आप प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं करेंगे 3 महीने में, आप अगर 15 महीने के लिए स्टॉक लेके बैठे हैं शायद 15 महीने तक ऐसा कुछ घटना घट जाए जहां पर जो आप उम्मीद कर रहे थे रिटर्न वो शायद आपके पास ना पहुंचे। तो इसलिए मार्केट में ये सारे फैक्टर्स आप बेशक लगे जब आप निवेश करेंगे, लेकिन इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग निर्भर करना मैं मानता हूं कि ये बहुत ही बड़ा एक रॉन्ग मूव होगा इन टर्म्स ऑफ रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट।
लेट्स मूव ऑन। वेल, द रिजर्व बैंक हैज अप्रूव्ड द ट्रांसफर ऑफ 2,10,874 crore rupees एज सरप्लस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अकाउंटिंग ईयर 2023-24 ड्यूरिंग द 608th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेल्ड इन मुंबई टुडे। अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल प्रेस रिलीज, द बोर्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास डिसाइडेड टू इंक्रीज द कंटिंजेंट रिस्क बफर सीआरबी टू 6.50% for financial year 2023-24 as the economy remains robust and resilient. It may be recalled that the board had decided to maintain the CRB at 5.50% of the Reserve Bank's balance sheet size to support growth and overall economic activity during accounting years 2018-2019 to 2021-22 owing to the prevailing macroeconomic conditions and the onslaught of COVID-19 pandemic. The same was increased to 6% with the revival in economy in 2022-23. Besides discussing and approving the Reserve Bank's annual report and financial statements for the year 2023-24, the board also reviewed the global and domestic economic scenario including risks to the outlook. So we talk of the contingent risk buffer CRB. A lot of economic jargon here. How would you simplify the story for an ordinary
person? At the end of the day, I guess the single one-line answer to this would be, we have around 2,10,000 crores, we in the sense the government of India has. And they have that particular money as a surplus, which can be used the way they want it in terms of, their priorities and things like that. So it's not a one-off practice. It's a daily practice. The RBI takes a call yearly in terms of surplus transfers and things like that. So it's an important announcement. The figure is an important fact. So I think based on that, we do expect once the new government comes in with the budget coming in, some amount of factoring would be done to how to spend more with whatever money you have at this point of time.
So we're good with Forex and we're good with good with surplus funds and more.
See, the fact goes that with any government, specifically in a huge Infrastructure development plan.
Yes.
Any big amount is always a small amount.
So absolutely. Yeah, and so much
the important
spending
fact
money.
Comes in. Yeah.
So much of money is being spent on infrastructure.
So the important fact comes in is how we leverage this money in terms of further borrowings and how we factor in, as you rightly said initially, in terms of milestones and targets and all. So that's the important challenge. Any money whichever you bring in is always less money when you're doing a huge scale of pan-India investments in important projects. The government spending is huge.
Yes, yes.
Specifically after the COVID period. So.
Yes, yes. Especially on infrastructure.
Absolutely,
say,
absolutely.
Right? World-class ports and highways, freeways. Being
I mean, if you want to do 12 hours Delhi-Bombay by road,
yes.
So you have to pay up somewhere for that.
Absolutely.
और कई बार जो है वो राजनीति में अक्सर हमने ऐसे आरोप प्रत्यारोप सुने हैं कि जब सरकारें नई चली आती हैं तो ये कहा जाता है कि खजाना खाली हुआ ये सब तो सरप्लस अमाउंट जो है ये एक देश के हित में एक अच्छी बात है. एशिया और यूरोप के बाजार का हाल जानते हैं कि चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स को छोड़कर के एशिया के सभी प्रमुख बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए. चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.02% बढ़ा जबकि सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स सूचकांक 0.02%, हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.13% गिरे हैं. दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.03% की मामूली गिरावट और जापान के निक्केई को 0.85% का नुकसान हुआ. यूरोप के तीनों प्रमुख सूचकांक आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे. अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी का डैक्स 0.61%, लंदन का फुटसी 0.4% और फ्रांस का कैक 0.46% की गिरावट पर कारोबार कर रहा था. जयंता जी, ये जो गिरावट है एशिया में और यूरोप में, इसका क्या प्रमुख कारण है? वहां के लोकल इश्यूज हैं या कुछ और?
देखिए, मूल तौर से हम सबको पता है विश्व भर में सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन यूएस का साथ साथ चीन का माना जाता है. और चीन का मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का स्टोरी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, अगर आप देखें हायर ग्रोथ, वो कहा जा रहा था कि रिवाइवल हुए हैं और जनवरी फरवरी में उसके ऊपर एक असर भी आया था जहां पे लोग उम्मीद कर रहे थे कि स्टील वगैरह वगैरह का डिमांड बढ़ा है तो शायद स्टीम चीन का जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ स्टोरी इज कमिंग बैक टू स्ट्रैक्स. लेकिन पिछले महीने के दौरान आंकड़े कुछ ऐसे आए जहां पे लोगों को लगा और वॉचर्स इन्वेस्टर्स सबको लगा कि जिस तरह का ग्रोथ स्टोरी चीन से उम्मीद किया जा रहा था उस तरह का ग्रोथ स्टोरी कहीं ना कहीं हकीकत में सच नहीं है. और ऐसे स्थिति में मैं मानता हूं कि अपार्ट फ्रॉम हाई इन्फ्लेशन विच हैज बीन इम्पेडिमेंट ग्लोबली पूरा ओवरऑल स्टॉक मार्केट ग्रोथ में, चीन का जो कहीं ना कहीं जिस तरह का ग्रोथ को उम्मीद किया जा रहा था उस तरह का ग्रोथ ना होते हुए वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत डैम्पनिंग फीलिंग आया हुआ है. और साथ में ये भी जरूर है कि मिडिल ईस्ट एशिया में जिस तरह का घटनाएं घटी जा रहा है और थोड़ा बहुत पोलराइजेशन हो रहा है ग्लोबल पावर्स का इस वक्त, तो ये सारी चीजें लेके ट्रिगर्स कुछ है नहीं विश्वभर का मार्केट
जी.
ये जरूर है कि कुछ कुछ लोकल फैक्टर्स आते रहेंगे जहां पे हम कुछ जैसे हैंगसेंग इंडेक्स हो जाए या यूरोप में जो सेंसेक्स स्टॉक मार्केट जो है उसमें कुछ बेशक आ सकते हैं. मैं ये नहीं बोल रहा अगले 2-3 महीने में नहीं आएंगे, लेकिन एक ग्लोबल ट्रिगर जो होता है जहां पे बड़े रूप से कहीं ना कहीं कुछ हासिल करने के खुशी के साथ साथ मार्केट में एक लगातार एक ग्रोथ फेज चलते रहेंगे, 2-3 हफ्ता 4 हफ्ते का दौर चलते रहेगा, वो दौर का कहीं ना कहीं कमी हम लोग इस वक्त इस बाजार में पिछले अप्रैल मई जून का भी आने वाले में जून में मानता हूं उस बाजार में विदेशी बाजार में बरकरार रहेंगे. शायद उस तरह का मोमेंटो जिसको बोलते हैं वो मोमेंटम मार्केट में शायद ना रहे.
व्हाट अबाउट द ड्रॉप इन येन एंड युआन?
सी, एज आई सेड, इन टर्म्स ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ चाइना and whatever is happening there in terms of facts, in terms of figures. In fact, I'm sure when you read the oil story, there has been a dampening in the oil prices also. The key factor has not been inflation. Key factor has been the dampening of markets in China because the growth factor is just not happening there in that sense. So I think this will be a continuing story to follow and also to understand to what extent we are speaking of Indian growth, that's fine. But finally, it has to be in tandem with how globally the world is growing. So I think that will be an important story to follow for the next few weeks in terms of how the Asian markets are shaping up, specifically leveraged across China's growth.
Right. Now look at the U.S. markets. U.S. stocks closed with slight gains yesterday, sending the S&P 500 and the Nasdaq to record levels. As investors assess the latest comments from Federal Reserve's officials for clues on the timing of a rate cut, the Nasdaq gained 0.22%, Dow Jones Industrial Average rose 0.18%, and the S&P 500 increased by 0.25%. How do you see the U.S. stocks going, and especially what's happening at the Federal Reserve? We saw the stocks had reached a fabulous level couple of days ago.
Yeah, there was a little bit of dampening though, because when they found out that the rate of interest announcements are just not happening, but then that was also assuaged to the extent that it was said that it might happen in September,
mm-hmm.
and don't expect an immediate jump off the cliff at this point of time. That's what they said in terms of rate of interest happening. So I think that has once again brought back some interest in the U.S. stock markets. But overall, the corporate results has all been doing very well. Let's also understand that underlying part of the fact is the U.S. economy at this point of time is doing quite well, and as I said, they are running into an election year very soon.
Mm-hmm.
So I think the present government would also like not to tinker much in terms of other factors. I mean, obviously they are not tinkering with interest rates because that's the call of the Fed.
Mm-hmm.
But on the whole, it's important to understand that U.S. also is going for elections. I don't see much upheaval in those markets except for the markets moving up from here on a broad basis, not on a day-to-day basis, but on a broad basis.
Strange times, because I think about 40 countries in the world are going through elections this year.
I mean, it's a finally happening, sir.
It's a very strange coincidence.
So, but then the important markets is what matters.
Yeah.
You know, I mean, it's not like, you know, every single market which is going for elections would have an impact on the global story. But it's an important market. But for us Indians, I guess, obviously, this is the mother of all
Uncle
elections.
Sam is a big bro.
Yeah.
Uncle Sam is a big
bro. No, but even the Indian general elections will have a really big impact on how the stock market
fares.
I mean, I said a while ago that don't base your investment decisions on election results. But that doesn't mean that, you know, they're not going to have an impact. They're going to have an impact in terms of how the stock markets behave, because you get to have a vision of the next 5 years.
इसी बीच एक और खबर लेते हैं. विश्व आर्थिक मंच WEF के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत 39वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि अमेरिका इस सूची में टॉप पर है. दक्षिण एशिया की निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत सर्वोच्च स्थान पर है. इससे पहले 2021 में प्रकाशित सूचकांक में भारत 54वें स्थान पर था. 7 के समग्र सूचकांक स्कोर पर जहां 1 सबसे खराब है और 7 सबसे अच्छा है, भारत ने 4.25 स्कोर किया है. द्विवार्षिक सूचकांक ने 119 देशों के यात्रा और पर्यटन क्षेत्रों का विश्लेषण किया और पर्यटन विकास को बढ़ावा देने वाले कई कारकों और नीतियों पर उनका मूल्यांकन किया है. जयंता जी, रैंकिंग में भारत की महत्वपूर्ण छलांग वैश्विक पर्यटन का जो परिदृश्य है उसमें मतलब क्या कहता है, और इसमें जॉब को लेकर के GDP में इसके योगदान को लेकर के आप क्या सोचते हैं?
देखिए विभूति, सबसे बड़ी बात तो ये हमें समझना चाहिए, टूरिज्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है विच इज अ हाईली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री. हर तरीके का लोग यहां पे जुड़ते हैं, कोई भी जाता है कहीं पे भी. और इसके अलावा जो एंसिलरी इंडस्ट्री है वो ह्यूज है, शायद वो हमारे गिनती में भी ना आए, लेकिन उन लोगों के ऊपर निर्भरता जिस तरह का ग्रोथ होता है. दूसरी बात यह है कि जिस तरह का देश का पोटेंशियल है इंडिया का, उस हिसाब से हम सबको पता है टूरिज्म आगे बढ़ नहीं पाए, कोई भी वजह हो जहां पे शायद उस तरह का फोकस न हो, नीतिगत रूप से चैलेंजेस रहा. उछाल बहुत अच्छी बात है, बट वी आर डिस्टेंटली अवे देन वॉट वी कैन अचीव, ये मेरा मानना है. खास करके ये देखते हुए कि कुछ कुछ हम ये देखते हुए कि कुछ कुछ जो छोटे देश है, जहां से हमारा राज्य से भी छोटे देश है, वो भी हमसे ज्यादा कहीं ना कहीं टूरिस्ट अट्रैक्ट करते हैं. सो इट्स एन इम्पोर्टेंट चैलेंज टू ओवरकम.
Right, let's take a look at the oil prices now. Oil prices fell more than 1% in global crude market. The Brent crude oil futures decreased by 1.15% to $81.13 a barrel. The U.S. West Texas Intermediate WTI lost 1.12% to $77.84 a barrel when reports last came in.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध के लिए सोना गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था. समाचार तैयार किए जाने तक सोने का मूल्य 241 रुपये की गिरावट के साथ 73,780 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ. जुलाई अनुबंध के लिए चांदी 735 रुपये गिरकर 93,990 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना दिन के कारोबार के दौरान गिरावट के साथ $2,436.40 प्रति पर कारोबार कर रहा था. वहीं अंतरदिवसीय कारोबार में चांदी भी $31.65 प्रति औंस के स्तर पर चल रही थी.
All right. Thank you, Jayant Das, for joining us.
Thank you very much.
In the studio and updating us with your views and reviews. Well, friends, before we close now, here's a reminder of the headlines. Domestic benchmark indices end in green. Sensex closes at 74,221. Nifty settles at 22,598. India improves 15 ranks, occupies 39th spot in World Travel and Tourism Development Index 2024. And Reserve Bank of India transfers 2,10,874 crore rupees to the central government as surplus. And friends, with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Vibhuti Mishra, signing off.
Namaskar.
Market Mantra. Market Mantra.